दोस्तों, मानसून या वर्षा ऋतु की भारतीयों के जीवन शैली में प्राचीन काल से अहम भूमिका रही है। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है और मानसून के अच्छे या बुरा होने का भारत पर अधिक प्रभाव पड़ता है, खास तौर से भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो इसी विषय पर और जानने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार और नेटवर्क 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर आलोक कुमार से बात की।
देखिए, शुरू से ही ये तो परंपरागत तौर पर माना जाता रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, बाद में और हाल के दिनों में जब अर्थव्यवस्था खुली 1991-92 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, जब वो वित्त मंत्री थे, इसके बाद हमारी सेवा क्षेत्र और औद्योगिक जो संरचना है उनका जो सकल घरेलू उत्पाद GDP में वो बढ़ता गया और कृषि पीछे छूट दी गई। लेकिन इसके बावजूद आज भी खेती का जो की जो हिस्सेदारी है GDP में वो बहुत है और भारतीय किसान आज भी मानसून पर निर्भर है सिंचाई के लिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून के साथ एक जुआ है। माना जाता है कि अगर मानसून अच्छा हुआ तो खेती अच्छी होगी और नहीं हुई बारिश तो फिर खेती की बर्बादी होगी। उस लिहाज से देखा जाए तो पिछले 2 साल जो थे वो सूखे की स्थिति झेलनी पड़ी भारतीय किसानों को, लेकिन इस बार मौसम विभाग और स्काईमेट जो एक निजी क्षेत्र की एजेंसी है, कंपनी है, पूर्वानुमान लगाती है मौसम की, उनका कहना है कि इस बार सामान्य से बेहतर मानसून के आसार हैं और ये बहुत खुशखबरी लेकर आई है। आप देखें तो जो बाजार है, शेयर बाजार, वहां तक इसका असर पड़ा है। तो इस लिहाज से ये इस साल मानसून को लेकर काफी उत्साह है किसानों में।
जी, ये बताइए आलोक जी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये भी दर्शाता है कि भारत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कहीं कमी हो सकती है कि 21वीं सदी में भी इस कदर मानसून पर निर्भरता है? थोड़ी बहुत तो होगी क्योंकि पर्यावरण पर हम निर्भर रहते ही हैं, लेकिन इस कदर निर्भरता कि अगर मानसून खराब हो जाए तो सूखा ही पड़ जाता है पूरी तरह।
बिल्कुल, लेकिन इसके लिए ये भी देखना होगा कि आजादी के बाद या उससे पहले अंग्रेजों के समय में सिंचाई की जो व्यवस्था थी उस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नेहरू के समय में कुछ डैम बनाए गए, जैसे भाखड़ा नंगाल वगैरह बना, टिहरी डैम बना, लेकिन बाद में जो सरकारें हैं वो इसको लेके और डैम को लेके चूंकि एक अलग तरीके से इन्वायरमेंटलिस्ट के बीच बहस शुरू हो गई थी कि वो इकोसिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है, तो उसके बाद छोटे छोटे डैम भी बनने लगभग बंद हो गए। और अभी अगर सिंचित क्षेत्र की देखें बात करें तो पिछले 20 सालों में जो वैसे खेत जहां सिंचाई की सुविधा पहुंच सकती है कृत्रिम तरीके से, वो डैम के जरिए, छोटे बांधों के जरिए वो विस्तार हुआ नहीं है। तो आज भी जो किसान है वो मुख्य तौर पर जो प्राकृतिक बारिश है उस पर डिपेंडेंट है और दूसरा जरिया उसके पास है वही पंप सेट का। तो पंप सेट में भी दिक्कत ये आ रही है, जैसे मराठवाड़ा का इलाका, तेलंगाना या उड़ीसा में, कि इतनी कम बारिश हुई पिछले 2 सालों में कि जलाशय सूख गए हैं और पानी का जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया। तो अगर 60 फुट की गहराई में पानी निकल रहा था तो वो पाइप अब काम नहीं कर रहा है किसानों के लिए। इस लिहाज से देखें तो मानसून पे निर्भरता और ज्यादा हो गई है और इस साल जो ये पूर्वानुमान है उसको लेके और ज्यादा किसानों में उत्साह कि अगर इस साल बारिश हो गए तो इसका दूरगामी परिणाम अगले 2-3 सालों तक पड़ेगा, क्योंकि जो भूमिगत जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो इस लिहाज से अगर अगले साल बारिश कम भी हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। इसलिए मानसून को लेकर जो पूर्वानुमान है उसको लेके इतनी बहस अभी चल रही है इस साल।
जी, मतलब आपके अनुसार जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जाता है जब मानसून नहीं होता, तो उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो कई विकसित देश हैं वहां पर जो सिंचाई के अलग तरीके भी, मतलब और वैज्ञानिक तरीके भी लागू किए गए हैं, लेकिन भारत में अभी उस स्तर पर खास कुछ नहीं है। जैसे इसराइल काफी मशहूर है इन चीजों के लिए।
हाँ, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, इन सब चीजों को लेके जागरूकता उतनी नहीं है। किसानी परंपरागत तरीके से ही होती है, अभी भी ऑर्गेनाइज्ड तौर पे खेती होती नहीं है, क्योंकि हमारे जो अधिकतर किसान है लगभग 80% वो सीमांत किसान है जिनके पास छोटे प्लॉट है, उनके पास कोई 20 एकड़ 40 एकड़ जमीन नहीं है, वो 2-3 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। तो उनके लिए वैसी व्यवस्था जो इजराइल की बात कर रहे हैं जहाँ फार्म हाउस कल्चर है, जहाँ खेती एक कॉमर्शियल वेंचर के तौर पे लिया जाता है, जहाँ हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ एक व्यक्ति के पास है और उसको मैनेज करता है, और इस लिहाज से वो अपनी बुनियादी सुविधाएं बनाता है। लेकिन 2 एकड़ प्लॉट वाला किसान हमेशा किराए पे पंप सेट लेता है और उससे प्रति घंटे 20 रुपए या 30 रुपए के हिसाब से वो अपना खेत सींचता है। तो ये एक मौलिक फर्क है, तो हमें समझना पड़ेगा।
आलोक जी बताइए कि मॉनसून जो है, ये तो कृषि की बात रही, लेकिन ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चलकर पानी की बहुत भारी समस्या आ सकती है भारत में भी, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से और कई और कारणों की वजह से। तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या कोई पिछले 2, 4 या 10 सालों में कोई ऐसी नीति बनी है कि आगे चलते हुए ये पानी की समस्या को संबोधित किया जा सके?
इसलिए आपसे देखें तो जो वाजपेयी जी की सरकार थी, पिछली जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसमें वाजपेयी जी ने जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की जो नीति बनाई थी कि नदियों को आपस में जोड़ो, और उसमें हमें अभी 2 नदियां मध्य प्रदेश में जुड़ी हैं, वो एक बड़ी सफलता हासिल है। ये अगर इस प्रोग्राम को तेज किया जाए, मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी भारत में, जो पीने का पानी है और जो सिंचाई का पानी, दोनों की समस्या से निजात पाने में। लेकिन इस पे काम बहुत स्लो चल रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में भी जो 2 नदियां जोड़ी गई हैं, वो डैम से नहीं जोड़ी गई हैं, बल्कि विशालकाय पाइप बना के और उस तरह बेतवा नदी के पानी को शायद किसी और छोटी नदी में डाला जा रहा है। तो हालांकि उससे एक तो मदद फौरी मिलती है, वो पीने के पानी की समस्या हल हो जाती है। उस पे अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो तेज हो अगर, तो ये समस्या सुलझ सकती है मेरे ख्याल से।
जी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई गवर्नमेंट का एक्शन प्लान या उस तरह से कोई सुर्खियों में नहीं है बात?
नहीं, वो की नीति बन गई तो उस पर पालन तो करेंगे, लेकिन उसकी गति धीमी है।
जी जी, जी।
कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं है कि इसको 2 साल में खत्म कर देंगे करके या इस तरह से करेंगे। तो आप देखें कि वही ट्रेन से फिर लातूर पानी भेजा जा रहा है, इस तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं, जो बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण है।
जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे आलोक जी, कि मॉनसून का कृषि क्षेत्र पर असर पड़ता है, और क्योंकि कृषि क्षेत्र आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझाइए कि फिर ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है उस पर इसका कैसे असर पड़ता है? बाजार में सेंटिमेंट तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जैसे सकल घरेलू उत्पाद है उस पर कैसे एकदम इतना असर पड़ जाता है?
देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप हमको अभी फिलहाल जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लगभग 7% की दर से बढ़ रही है, तो इसमें जो मुख्य योगदान है अभी वो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। कृषि क्षेत्र में हम तो पिछले 1 साल में देखें तो पिछले साल हालांकि सकारात्मक विकास, लेकिन इसलिए था कि उससे पिछले साल नकारात्मक विकास और मतलब माइनस में था। अगर वो कृषि विकास दर 3% हो जाए तो आप समझिए कि हमको जो 10% का जो टारगेट है, एक अल्टीमेट टारगेट डबल डिजिट ग्रोथ का, वो पाने में बहुत मदद मिलेगी।
आलोक जी, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।